अंतपुरा दासपुरा सुखय वात्सल्य का होता है।
तब इनको अढ़ाई रस कहा जाएगा, माने मुख्य रसों का, और
गौण
रस सब हो सकता, माने मुख्य रस का ये अढ़ाई रस। इसलिए कोई कहे कि रामचंद्र जी में सब रस हैं किंतु प्रकाशित नहीं करते, तब तक गड़बड़ हो जाए। राम उसी का ही नाम है, उन्हीं कृष्ण का नाम है, जब वो अढ़ाई रस को प्रकाशित करके अपने बाकी को अच्छा भी रखते हैं। निशिंग रूप है, निशिंग में कितना है, शांत है और दास्य, यही दो प्रकार है। वो भी दास्य पर पूर्ण रूप में नहीं, बल्कि उनमें रौद्र रस इत्यादि, भयानक इत्यादि, उनमें ये सब गौण रस प्रकाशित अधिक। तो ये निशिंग रूप में कोई मधुर रस की कल्पना भी नहीं कर सकता। अच्छा, उनमें है किंतु प्रकाशित नहीं, ऐसा भी मत कहो। कृष्ण में है, जब वो केवल इतने ही रसों को, दो रसों को और गौण रसों में भयंकर और वीर और रौद्र भयान, इन तीनों को अधिक प्रकाश करते हैं, तब उनका नाम कृष्ण। कृष्ण ही सब रस हैं और सब अवतार हैं। कृष्ण में ही जैसे चंद्र में अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी ये सब कल्पित होती है, ऐसे कृष्ण में ही ये सब चीजें कल्पित हैं। कृष्ण ही मूल हैं और उनमें ही लोग करते हैं। ये दिखता है क्यों, यदि प्रहलाद महाराज जी होते कृष्ण लीला के समय में, तो वो कृष्ण को निसिंह रूप में स्तुति करते। हनुमान जी कृष्ण को जब देखेंगे तो वो राम रूप में उनकी स्तुति करेंगे, उनको राम ही दिखाई पड़ेंगे। इसलिए द्वारका इत्यादि में जब हनुमान जी गए तो उनको उसी रूप में दिखते। तो सर्व ऐश्वर्य, सर्वशक्ति, सब रस पूर्ण ये कृष्ण है, इसी के लिए बताया गया ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराज गोविंद सर्व कारण कारण। वृंदावने अप्राकृत नवीन मदन काम गायत्री काम बीजे जार उपास। ये जो स्वयं भगवान जो कृष्ण हैं, ब्रजेंद्र नंदन या यशोदा नंदन या राधा कांत, ये जो स्वयं कृष्ण है, ये वृंदावन में अप्राकृत नवीन मदन है। मदन दो प्रकार का, एक प्राकृत और एक अप्राकृत। इस जगत में उसको काम कहते हैं और उस जगत में अप्राकृत काम या नवीन मदन उनको कहते हैं, अनंग भी कहते हैं। दोनों में अंतर यह है, जगत वाला काम नरक में ले जाता है और इंद्रियों में कभी कभी उत्पन्न होकर के क्षुब्ध कर देता है समस्त इंद्रियों और सब समय नहीं रहता, कभी कभी वो प्रकट होता है। और अप्राकृत मदन है, वो सब समय आत्मा को क्षुब्ध करता है किंतु कभी उतरेगा नहीं उसका नशा, और कृष्ण के प्रति होगा, ये होगा जड़ के प्रति और वो होगा कृष्ण के प्रति, और उसका नशा कभी नहीं उतरेगा, इसका उतर जाएगा कभी मारपीट से, पीट करके अपमानित करके जेल में डाल दें या कुछ और भी हो जाए तो ये नशा उतर जाएगा, उसका नशा किसी प्रकार से नहीं उतरेगा। और सब समय सेवा भाव में और निस्वार्थ होता है और नव नवायमान होता है, वो काम गायत्री काम बीजे जार उपासना, काम गायत्री और काम बीज के द्वारा जिनकी उपासना, वो स्वयं काम है। कृष्ण का नाम ही है काम। काम माने क्या, जिसकी कामना की जाती है, उसको कहते हैं काम। अभिलाषा जिस वस्तु की होती है, सबसे श्रेष्ठ अभिलाषा क्या है? कृष्ण ही, क्योंकि वो सबसे सुंदर हैं, सबसे मधुर हैं, सबसे उदार हैं, सबसे बड़े कृपालु हैं, सब प्रकार से वो सबसे श्रेष्ठ हैं। इसलिए उनकी यदि के प्रति हमारा काम हो, वो मिल जाए तो सब कुछ मिल जाए, तब हमारा स्वरूप भी चरितार्थ हो जाए। जब तक वो नहीं मिलते हैं तभी तक हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, चाहे जहाँ भी चले जाएं। जैसे गोप कुमार का, जब तक नहीं मिले उनको वैभव मिलता गया, पृथ्वी में बड़े धनी हुए, फिर इंद्र बने, ब्रह्मा बने, ऊपर तक चले, कहीं भी इच्छा पूर्ति नहीं हुई। सनक सनंदन, सनक कुमार इत्यादि के यहाँ भी गए, ब्रह्मा के निकट गए, फिर वहाँ से शिवलोक में गए, इसके बाद वैकुंठ गए, रामचंद्र जी के यहाँ गए, फिर द्वारकापुरी गए, मथुरा आए, कहीं नहीं उसकी तृप्ति हुई। अंत में जब कृष्ण से मिले तो उनकी शांति। उसी तरह से जीव मात्र के लिए जब तक कृष्ण नहीं मिलेंगे तब तक उसको कभी भी शांति और ये नहीं होगा। कृष्ण का सर्वोत्तम रूप है काम, वो आस्वाद्य और आस्वादक दोनों है, दो रूप उनका है। कृष्ण कैसे हैं? एक रसिक है और एक रस है। जब रस है तो आस्वाद्य है, और जब रसिक है तब आस्वादन करते हैं, करता। जब रस स्वरूप है तब आस्वाद्य है, तब वो रस के विषय हैं, दूसरों के द्वारा आस्वादनीय है उसे। और जब वो रसिक शेखर हैं तो रसिक शेखर होने पर आस्वादन किया जाता है, तब द्वादश रसों के जो आश्रय हैं उन्हें अंदर में जो प्रीति है उसका वो आस्वादन, उसका आस्वादन है, तब वो
आस्वादक
आस्वादक हैं, तब रसिक हैं। रसिक और रस में, आस्वाद्य और आस्वादन में ये उनका ये भाव है। यदि इनको कोई रस पूर्वक आस्वादन करना चाहता है, उनको आस्वाद्य मान करके, तो क्या करना होगा? काम गायत्री और काम विषय उनकी उपासना करें। पहले होगा काम कृष्ण मंत्र, और इसके बाद में होगा काम काम भी, और इसके साथ में जो करना पड़ेगा काम गायत्री, तब जाकर के उनकी उपासना से उनको ये समझ सकेंगे कि कैसे वो रस स्वरूप है और कैसे वो रसिक है, तब दोनों की उपलब्धि होगी, ऐसे नहीं होगी। काम गायत्री में बतलाया गया है 24.5 अक्षर, और ये अक्षर 24.5 अक्षर ही एक एक चंद्र माने कृष्ण के अंग रूपी चंद्र है। तो ये चंद्र कितने हुए? तो ये 24.5 एक एक चंद्र माने पूर्ण चंद्र है, इसमें आधा कोई नहीं है। चंद्र के दृष्टि में पूर्ण परिपूर्ण है, इसलिए 24.5 ही हुए चंद्र, जितने अक्षर हैं उतने चंद्र हैं, आधा अक्षर है ना,
आधा का रूप पूरा कर लिया गया,
वो पूरा मान लिया गया, आधा ही है किंतु चंद्र की दृष्टि से वो परिपूर्ण है। कैसे है भाई? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे आराधना, बिना आराधना किए हुए ऐसे ही हम कहने से भी समझ में नहीं आएगा। उसमें बतला रहे हैं ये कैसे, पहले गायत्री है, ब्रह्म गायत्री जिसको, इसके अनेक अर्थ हो सकते हैं, एक दो नहीं, और इसके देवता भी बहुत से हो सकते हैं, सूर्य भी हो सकते हैं, सविता है ना, और अग्नि भी हो सकती है, इंद्र भी हो सकते हैं, विष्णु भी हो सकते हैं, कृष्ण भी हो सकते हैं, बहुत से इसके देवता हैं। इसलिए शिव उपासक भी ये करते हैं ना, तो इसको शिव का मंत्र कहते हैं। स्मार्टों में जो सूर्य उपासक हैं उसको सूर्य उपासना का मंत्र कहते हैं, विष्णु की उपासना करने वाले उसको विष्णु का मंत्र कहते हैं। जैसे ओमकार है ना, और ओम ब्रह्मा विष्णु महेश, इस रूप में लेकर के विष्णु को बीच में करके शंकर ओम को दोनों सहायक है, इस रूप में उनको लेते। इसके बहुत से अर्थ भी, जैसे जैसे देवता बदलते जाएंगे, जिस जिस देवता के लिए वो किया जाएगा उसका अर्थ भी वैसे ही होगा। इसलिए समस्त भारतवर्ष में जितने भी ब्राह्मण लोग क्षत्रिय लोग वैसे लोग गायत्री मंत्र जरूर करते हैं। आजकल स्त्रियों को भी दिया जाने लग गया, यहाँ तक कि जो कुछ नहीं जानते उनको भी मंत्र बाजार का वो सूत्र खरीद कर धागा खरीद करके बस लपेट देते हैं, वो भी हो। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक यज्ञ हुआ था, करके 10-12 वर्ष पहले की 15 वर्ष पहले श्री राम शर्मा ने कराया था, अब तो वो दिवंगत हो गए। बड़ा भारी मेला लगा था, उसमें 1008 यज्ञ कराए, और जो आ गया चीटी से लेकर के बैल गधे घोड़े, बाजार में उस समय में धागा खत्म हो गया, सब खत्म, कोई धागा नहीं, और सबको दे दी और सब ब्रह्म में लीन हो गए। इतना सहज नहीं, इसे कहते हैं होने पर भी काम गायत्री जो है उसका एक ही मात्र अर्थ है, दो अर्थ नहीं होगा। काम गायत्री वो कृष्ण कर्तृत्व किसी में लागू होगा ही नहीं, किंतु है उसी का परिपक्व ये भाव। ब्रह्म गायत्री अष्टपुट है और उसी का यह सिद्ध स्वरूप परिपक्व फल या रसमय ब्रह्म, ये दोनों एक ही चीज को डिनोट करता है, एक ही चीज के लिए। ब्रह्म गायत्री ही परिपक्व अवस्था में, सिद्ध अवस्था में काम गायत्री, तब यह रसमय होती है। उसमें सूर्य लिया गया, कहीं कुछ लिया गया, और उमा से ये सब बहुत से तत्व तो सब लिए गए। इसमें वही ओंकार जो था प्रणव, उपासना करते करते भक्तों के हृदय में वो पुष्पित पल्लवित और फल से युक्त होने पर वही काम बीज हुआ। इसमें काम बीज होने पर रस, जैसे कच्चा आम है, कच्चा आम में सभी कुछ पके आम में होता है, किंतु वो सब रसमय हो जाता है, इसलिए रस एक बढ़ गया। इसी प्रकार से इसमें उसमें तीन था ना, अ उ म, और इसमें हो गया क ल ई अनुस्वार, ये चार इसमें, एक रस बढ़ गया। अब इसके साथ में अब इसमें कृष्ण मंत्र भी इसी के अंदर है, वो भी आ गया है, किसमें काम गायत्री वो भी आ गया है, ये बतलाना नहीं चाहिए। कभी अभी हल्के ढंग से बतला देता, हल्के ढंग, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश लोग दीक्षित है, इसलिए थोड़ा सा बतला, पूरे ढंग से नहीं बतला, जिसको जानना होगा वो स्पेशल रूप में वो पूछेगा तब होगा, अभी साधारण ढंग से समझ। कल ई अनुस्वार, वो ओम ओम ही यहाँ पर हो गया, और बाकी जो तीन चरण है गायत्री वाले में, ब्रह्म गायत्री का वो तीन चरण इसमें भी आ गए। आ करके पहले कृष्ण मंत्र हुआ, और कृष्ण मंत्र का फल लग गया काम गायत्री, वो काम, काम मने ही फल होता है, वो फल आ गया। जैसे कल ई अनुस्वार है, क माने सच्चिदानंद श्री नंद नंदन ब्रजनंद नंदन श्याम सुंदर, और ई का ई माने दीर्घी का ये शक्ति है, शक्ति हुई सर्वशक्ति, सब शक्तियों की मूल शक्ति कौन है, लक्ष्मी स्वरूपा श्री राधा, तो ई का अर्थ हुआ राधा जी, और ल हुआ दोनों के मिलन में जो रस उत्पन्न होता है, उनका जो विलासमय जो भाव है, ये हुआ ल माने आनंद आह्लादनी से, ये दोनों का मिलन का, ये ब्रह्म और ओंकार में ये चीज नहीं है, और ये जो है वो क्या है, ये उसमें जो आनंद मिल करके दोनों से जो उत्पन्न हुआ वो ये तो हुआ विलास, और उन दोनों का जो मिलन का जो आनंद है वो हुआ चंद्रबिंद। अब उसमें पहले मंत्र है, कृष्ण मंत्र में कृष्ण है, गोविंद है और गोपी जन बल्लभ, एक है संबंध, एक है अभिधेय, एक है प्रयोग, संबंध है कृष्ण, बहुत ही सुंदर रूपवान गुणवान है, रूपवान गुणवान और सुंदर से ही संबंध होता है और सभी चाहते हैं, इसलिए मदन मोहन जो हैं वही यहाँ पर कृष्ण है, वो जगत के साथ में संबंधित है, सब जगत को प्राणियों को मोहित करने वाले ये समस्त जितने भी अवतार हैं सबसे सुंदर, और यही गो को माने इंद्रियों को उत्फुल्ल करने वाले हैं, आनंद से प्रमत्त करने वाले हैं, तब वही कृष्ण मदन मोहन जी ही गोविंद के रूप में अनुभूत होते हैं समस्त इंद्रियों के द्वारा, हृदय को भी उल्लास करने वाले आनंद, नैनों को भी, कर्णों को भी, समस्त इंद्रियों के वो विषय और सबसे उनकी सेवा होती है, इसलिए वही गोविंद हुए। और गोपीनाथ कौन है, ये प्रयोजन तत्व है, बंशी बटकर्ता स्थित कर्षण बेन स्वाई गोपीनाथ, वो समस्त जीवों को प्राणियों को अपने बंशी से और अपने रूप से सबको आकर्षित करने वाले और उनको आनंद देने वाले ये गोपीनाथ। अब इन तीनों को ले लो, उसमें काम गायत्री में पहला है, पहले जो मदन मोहन जो हैं संबंध के देवता, अब यहाँ पर मदन मोहन जो अब ये काम है, माने वही काम के अधिष्ठात्री देवता, वही जगत में सबसे अधिक अभिलषणीय है, वही काम स्वरूप,
ये कामदेव संबंध देवता,
अब वहाँ आकर के परिपक्व रूप में यहाँ पर हुए काम, ये काम ही। अब दूसरे से संबंध वाले गोविंद जी सेवा को ग्रहण करने वाले समस्त रसों को के जो विषय और आश्रय दोनों हैं, कौन है विषय और आश्रय, कृष्ण। अब ये यहाँ पर जो गोविंद हुए सब रसों में इनकी आराधना हो सकती है और सब रसों के ये प्रापक ग्रहण करने वाले हैं, आस्वादन करने वाले भी आस्वाद्य भी हैं। अब ये हो गए, यही हो गए, ये अभिधेय हो गई है, और उसे ऊपर जो
आनंद
उसमें थे
गोपीनाथ,
गोपीनाथ गोपियों के साथ में विलास करने वाले समस्त रसों के मूल आश्रय विग्रह जो हैं और सब रसों का आस्वादन करने वाले गोपीनाथ जी, अब यहाँ पर हो गए और समस्त जगत को प्रमत्त करने वाले। अब उसने बतलाया ये काम गायत्री से उनकी उपासना होती है। केवल काम गायत्री से नहीं, उसमें बीज से जोड़ दो, तो बीज से जोड़ने पर यह पूरा मंत्र हुआ। उसमें अब देखो ब्रह्म गायत्री भी आ गई और कृष्ण मंत्र भी इसमें आ गया, इसलिए ब्रह्मा जी को पहले कृष्ण ने योग माया के द्वारा गोपाल मंत्र लाखों वर्ष तक उनकी आराधना की। जब परिपक्व उनकी आराधना हुई तो कृष्ण ने अपने बंसी की ध्वनि से उनको
काम
कैसे दिया, तीन स्वरों में दिया, तीन तालों में स्वरों में दिया, इसलिए त्री है, आठ आठ अक्षरों का एक संघ, एक एक स्वर यहां दिया और हो करके तीन चरणों में जिसका गान करने पर विश्व के समस्त लोगों का तरण तारण दोनों कर देते हैं और अपने को उसमें काम के रूप में प्रकाश पाते हैं। ये हैं काम गायत्री। अच्छा, इसको कृष्ण गायत्री कहने से हर्ज क्या था,
संबंध अगर हो जाएगा
इसको काम गायत्री कहा। यहाँ पर कृष्ण से भी बढ़कर के नाम ये जो काम है ये मधुर भाव में ही केवल ये ग्रहण किया जा सकता है। कृष्ण की चरम परिणति या सर्वोत्तम अवस्था का नाम काम वही कामदेव अनंत के रूप में, इसलिए काम गायत्री कहा, उसी से उनकी उपासना। इसमें सनातन शिक्षा में ये बतलाया गया, ये वही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी जब इसकी व्याख्या करने के लिए गए तो उनको पता नहीं जैसे भाई ये 24.5 अक्षर तो इसमें कैसे हुए, या तो होगा ना क्लीन को छोड़ दो तो होगा 25 और उसको ले लो क्लीन को तो हो जाएगा 26। उसमें भी अंक में जो है ना
आधा तो
काम दुआ है ना, या और तो को अलग अलग कर दो तो 26 हो जाएगा और या को एक ले लो तो 24.5 होगा,
25
होगा। तो 25 में से कौन सा आधा है जो 24.5 होगा नहीं समझ रहे, ये समझना भी बहुत कठिन है। हम लोग को ये बतला दिया भी जाए जैसे कौन कौन सा अक्षर क्या है तो अभी हम लोग के समझ में कुछ नहीं आएगा। अब ये कह रहे हैं राधा जी ने उनको स्वप्न दिया और उसमें प्रकट होकर के उनको कहा क्या वर्णागम व्याकरण में इसको बतलाया गया है, ये बी के पहले जो यकार होगा वो आधा। उन्होंने पुस्त आकर के खोजा, ढूंढने के बाद में मिली और उन्होंने देखा उनका संशय दूर। अब साधना करने के बाद में उनके एक एक अक्षर 24.5 अक्षर होना चाहिए और ये 24.5 चंद्र है, ये कैसे हुआ चैतन्य चेता में वहां बताया गया। मुख चंद्र जो है मुख ये पहला चंद्र और सबसे श्रेष्ठ है, ये समस्त चंद्रों का ये मालिक
राजा है।
24.5 चंद्र हैं उनमें ये मालिक कौन है, राजा कौन,
मुख चंद्र
ये। अब इसके बाकी सब परिषद चंद्र हैं, सब परिषद चंद्र, परिषद माने परिवार परिकार। फिर मुखचंद्र के बाद में बतलाया दो गंड माने
बपूर,
तो ये भी दो पूर्ण चंद्र हुए। तीसरा हुआ ना, और चौथा बतलाया लला, इसको बतलाया अर्ध अर्ध चंद्र, और उसके बीच में जो ललाट में जो बिंदी होती है ये पूर्ण किंतु है, ललाट को आधा क्यों कहा? ये केशों से आधा ढका हुआ है और है ना अष्टमी का चंद्र, इसको माना गया। अष्टमी का चंद्र क्यों माना गया? वो स्पष्ट होती है और आधा में बने। 16 का आधा कितना हुआ? 8 हुआ ना। 16 चंद्र की 16 कलाओं में से जिस दिन आधा होगा अष्टमी को, तो वो आधा चंद्र हुआ, इसलिए अष्टमी का चंद्र मान लिया गया ये ललाट। और उसमें यहाँ जो बिंदी है उसको पूर्ण मान लिया। ये हुआ 4.5। 4.5 में मुख 1, 2, 3, 4 पूर्ण वाला 4 और आधा हो गया 4.5। और बाकी जो रह गया 20, 10 ये नख और 10 ये नख, ये 24.5। इसमें से एक एक चंद्र का वर्णन करते हुए आधा जो ललाट है वो ठीक उसमें जो ये है ना वो ठीक उसी स्थान पर है। जब अच्छी तरह से विचार करेंगे तो देखेंगे ये उसी स्थान पर ललाट के स्थान पर ही वो अर्ध चंद्र है। किंतु अर्ध चंद्र होते हुए भी वो पूर्ण है, इसलिए 4.5 के लिए नहीं, वो 24.5 में आधा वाला भी पूर्ण है। क्योंकि कृष्ण कैसे हैं? अखंड है, पूर्णमिदम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेव
पूर्णमादाय
पूर्णमेव अवशिष्यते। वो परिपूर्ण है, उनका आधा कुछ नहीं, उनका एक अंश और कला भी है वो परिपूर्ण है। इसलिए काम गायत्री जो है ब्रह्म गायत्री का परिपक्व और रसमय स्वरूप है। उसमें ये सब विलास नहीं है, उसमें जगत की सृष्टि का व्यापार है। भूर्भुव सह मह जन तप सप्तकार सृष्टि जिससे होती है और जिससे ये सब प्रकाशित होते हैं, जिस तेजी के द्वारा प्रकाशित होते हैं मैं उनका ध्यान करता हूँ। और यहाँ पर क्या हो गया? जो विलासों से परिपूर्ण जो हैं, जो अपनी शक्ति के साथ में अपने समस्त शक्तियों के साथ में परिपूर्ण रस में जो विकसित हैं, उनकी उपासना का जिसमें बदला, ये एक दो दिन का काम नहीं। इसकी उपासना यदि ठीक से इसकी उपासना हो, अपने आप अपने स्वरूप को ये प्रकट करते चले जाए। गायत्री भी वैसे ही है, गायत्री भी प्रकाशित होने में न जाने कितने जन्म लग जाएगा, किंतु ब्राह्मण मात्र को, बीज मात्र को, बीज मैंने ब्राह्मण सबको गुरु से ग्रहण करके और इसका कुछ तत्व जान करके जरूर करना चाहिए, तब हम मनुष्य किस लिए हुए हैं तब कुछ समझेंगे। इन्हीं सब चीज़ों के लिए जो तत्व से नहीं समझ कर तुम नहीं करेंगे तो कुछ भी उपलब्धि नहीं होगी, कुछ देने के बाद में उसे छोड़। और ऐसे समझ बूझ करके करेंगे उसमें श्रद्धा आएगी, फिर निष्ठा आएगी, ऋषि आएगी। और वही मंत्र कृष्ण के रूप में, ये मंत्र नहीं है, ये राधा कृष्ण का ये स्वरूप है, ऐसा समझ करके। और ये सर्व अंतर्जामी और वृंदावन के नवीन मदन सर्व कारणम सर्वशक्तिमान सर्व ऐश्वर्यमय ये नाम है, ऐसा समझ करके करना है। फिर कहते हैं पुरुष जोशी किंबा स्थावर जंगम सर्व चित्ताकर्षक साक्षात मन मन मनमत मनमत मदन। पुरुष पुरुष हो या जोशित हो, नारी हो अथवा स्थावर जंगम भी क्यों न हो, स्थावर जंगम माने पेड़ पौधे कीड़े पकौड़े जो कुछ हैं सबके चित्त को आकर्षण करने वाले हैं, और साक्षात मनमत के भी मदन स्वरूपी है। कौन? काम गायत्री अथवा कृष्ण, दोनों के, ये दोनों एक ही स्वरूप हैं, दो नहीं हैं। अभिमंत्र के रूप में देखता है, देखते हैं। नाम मंत्र कृष्ण और कृष्ण स्वरूप सभी एक है। कृष्ण का स्वरूप कहो, मंत्र कहो, नाम कहो, सब एक ही स्वरूप। किंतु होता क्यों नहीं? अभी हम लोग कृष्ण नाम करते हैं, क्यों नहीं दिखता? दिखता क्यों नहीं है? जैसे हम लोग अभी बद्ध अवस्था में हैं, संसार के विषय जीतने हैं वो बड़े प्रिय और मनोरंजन लगते हैं, मनोहारी लगते हैं इस जगत में। जैसे क्रीड़ा है, फुटबॉल है, क्रिकेट है और दूसरे खेलना दुल्ला। आजकल यूरोप में फुटबॉल खूब जोर से हो रहा है, कहीं क्रिकेट हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, ये मनोहरण हो रहा है। किंतु हम लोगों को तो कुछ अच्छा नहीं लगता ये सब, बल्कि देख करके इधर से आंख बंद करते हैं। क्यों? इसी तरह से इस जगत में सब कुछ मनोहारक तो नहीं लगेगा। जब तक हम बद्ध हैं तब तक ये जगत अच्छा लगता है कुछ समय के लिए, किंतु जब ही अप्राकृत वस्तु कुछ कुछ अनुभूति का विषय होने लगती है तो ये संसार का सब कुछ, यहाँ तक कि परिवार, स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति, जो कुछ भी है सब, ये विश्व की सृष्टि करने वाले शंकर हैं ना? शंकर जी इस रूप से मुग्ध नहीं होते, ये विश्व के रूप को देख करके यहां तक कि कामदेव को भी जला दिया ना? किंतु उन्होंने जब मोहिनी रूप के लिए प्रार्थना किया तो अप्राकृत जगत की एक झलक थोड़ी सी दे दी, अप्राकृत जल की या कहो ये महामाया का ही झलक दे दी। और शंकर जी ने उसे देखा और शंकर जी कैसे हो गए? एकदम उन्मत्त हो गए। इतना उसमें रूप है, इतना उसमें माधुर्य है। जो लोग अनुभव नहीं करते वही लोग भजन नहीं करते। जिनको थोड़ा सा भी अनुभव है ना, वो भजन छोड़ करके जगत में कभी भी नहीं जाए। चैतन्य महाप्रभु जी की विश्व सुंदरी स्त्री, आज उनकी शादी हुई वहां
जन्मभूमि
में, अभिनय शादी, महाप्रभु उनके साथ में बड़े सुख से रह रहे। कुछ दिनों के बाद में गया गए, गया गए काजी ने कैसे उनके गुरु मिल गए ईश्वरपुरी पर। कैसे व्यक्ति नंग धड़ंग, विश्व का कोई भी विषय उनके पास में रुपया है नहीं, खूब सुंदर होंगे वैसा भी नहीं, बूढ़े थे, बस हरे कृष्ण करते थे और आंखों से सब समय आंसू प्रवाहित होते। उनसे भेंट हो गई, महाप्रभु जी ने उनको देखा और कहा आज हमारा पितृ श्राद्ध इत्यादि जिस काम के लिए गया मैं आया,
श्राद्ध हो गया,
आज आपके दर्शन से कोटि कोटि माता पिता का श्राद्ध हमारा आज
हो गया
जथा। अरे मैं अब तक क्या कर रहा था, संसार के वैभव में लुप्त हो रहा था, कितना मैं मूर्ख था। महाप्रभु जी मन ही मन में विचार कर रहे हैं भगवान किंतु अभी नर लीला के अनुसार में चले, मैं अभी संसार घोर में चल रहा था, आज इनके दर्शन से और इन्हें जो मंत्र दिया आज मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। जो पढ़ने वाले निमाई थे पंडित निमाई वो बदल गए,
भावुक निमाई हो गए।
और हो गए कैसे?
भावुक निमाई,
भावुक निमाई हो गए। और जो जा रहे थे घर, घर मैंने विषय की तरफ में, संसार की तरफ में, वो वहां से मुड़ करके चले जाने जा रहे हैं दर्द। और सब समय क्या कर रहे हैं? कहां मोर प्राणनाथ मुरली बदन, कहां जाऊं कहां पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मोर। सब समय ये झूठ मूठ को रो रहे हैं, इतने वैभव में फले और विश्व के श्रेष्ठ सुंदर महाप्रभु जी, और उनकी पत्नी भी बड़ी सुंदरी, और सबको छोड़कर के रोने लगे। क्यों? कुछ देखा ना, ऐसे ही रोने लगे। देखा जैसे बिल्लो मंगल ने कृष्ण को देखा ना, भक्त लोग ऐसे ही देखा और सबको त्याग कर दिया। उसी तरह से यहाँ पर भी कर रहे हैं उनका, ये दो तीन श्लोकों में अभी वर्णन करेंगे कैसे वो सुंदर हैं, कैसे रूपवान हैं, कैसे गुणी हैं, सबका चित्त कैसे विमोहन करने वाले होते हैं ये कृष्ण, जिनको उपासना काम गायत्री से होता है उसके लिए। तासामा विभूत गौरी स्मयमान मुखाम गुजर पीतांबर सत्वी मन मत मन साक्षात मन मत। ऐसा सुंदर धारण करके जगत के समस्त प्राणियों को मुग्ध करने वाला मनमत के भी मन को, अर्थात कामदेव के भी मन को मथन करने वाले ऐसा सुंदर रूप प्रकाशित किया। नाना भक्ते रसामृत नाना भी, इसकी व्याख्या हमने पहले सब की इसलिए आगे चल रहा। नाना भक्ते रसामृत, इसको समझने के लिए थोड़ा समझ लीजिए। उस समय विश्व की सबसे सुंदरी गोपियां हैं, कैसी है किशोरी हैं, रूप गुण में सबसे श्रेष्ठ रहने वाली वो वहां उपस्थित थी। सबने अपना अपना एक आसन उनके लिए बनाया, एक एक दल की गोपियों ने अपने उत्तरीय वसन उन पर रखे। और गोपियां वो जो अभी विरह में तड़प रही थी उनके निकट आए, विशेष करके चार उसमें प्रसिद्ध हैं, स्वपक्ष विपक्ष तटस्थ और सूर्य, वो सब वहां पर उपस्थित। किसी ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और उनके तरफ में देखने लगे। मतलब क्या, आप कैसे निष्ठुर हैं जो हमें छोड़कर के असहाय अबला बनाकर और रोते हुए छोड़कर के आप अंतर हो। किसी ने पैर पकड़ लिया और अपनी गोदी में रख ली, ये एक तरह की गोदी। और किस कोई
काचित ग्रुप की बात था
अभी, अब तीसरी भी
बच्चे सर पर अपने चरण को धारण कर,
कृष्ण के चरण को अपने वस्त्र से इत्यादि पर धारण करके और उनकी तरफ में देख रहे। और कोई कोई गोपियां बहुत दूर से निकट नहीं आई, उनके तरफ में भ्रिकुटी से देखने लगी और मुख भी वैसा कुछ रोष पूर्ण, इसमें कुछ बाम्य भाव वाली, कुछ दक्षिण भाव वाली, कुछ सुहित पक्ष वाली, तटस्थ वाली, वो सभी और श्रीमती राधिका जी जो हैं और उनकी जो सहेलियां हैं दूर से उनकी तरफ में देखने, कुछ रोष पूर्वक कुछ मान के साथ में देखने, आप कैसे हैं। और उन्हीं लोगों ने पीछे से प्रश्न किया था, प्रीति करने पर जो प्रीति नहीं करते, प्रीति करने पर जो प्रीति करते हैं,
प्रीति करे और ना करे नहीं करे,
और नहीं करने पर भी जो प्रीति करते हैं कि करते ही नहीं है, उनमें से आप प्रभु कौन से हैं, उनसे सब ऐसे प्रश्न किए। वो सब श्रीमद् भागवत का अर्थ नहीं है सर, कैसा ये सब विषय है, बिना अच्छी तरह से पढ़े नहीं, बिना किसी अनुसंधान किए और बिना अच्छी तरह से समझ नहीं आएगा। अब करें नाना विध भक्त, विशेष करके पांच प्रकार के भक्तों में से रसामृत नाना विध भक्तों भक्ते भक्तों के भक्तों में नाना रसामृत नाना विध है, रस का जो अमृत है तरह तरह के, अर्थात पांच प्रकार के शांत दास्य सख्त बासल और मधु, से सब रसामृत विषय आश्रय, उस रस के अमृत का विषय और आश्रय ये कौन है। दो तरह से, एक उस अमृत के रस भक्ति रस है, भक्ति रस के एक विषय है एक आश्रय, विषय कौन है और आश्रय कौन है, शांत दस सख्त बात्सल्य मधुर रस वाले जितने भी भक्त हैं ये सब आश्रय। किंतु जब यह कहा जाएगा जब कृष्ण ही दोनों के आश्रय और विषय हैं तभी हो जाएगा, तभी ये ठीक है। कभी कभी कृष्ण समस्त विषय रसों के आश्रय होने पर भी, विषय होने पर भी आश्रय भी हो जाए। जब भक्त लोग कृष्ण का की सेवा करते हैं
तब कृष्ण विषय
और कृष्ण उसका रसास्वादन करते हैं, जैसे यशोदा जी की गोदी में बैठे हुए हैं कृष्ण और यशोदा जी उनको लाड़ प्यार करते हुए अपने स्तन उनको पिला रही हैं और उनके वात्सल्य रस का आस्वादन कृष्ण कर रहे हैं, तो वो हो जाएंगे क्या विषय हो जाएंगे, आस्वादन कर रहे हैं ना? और यशोदा जी के आंखों में आंसू आने लग गए और कृष्ण का रूप गुण और उनका बाल्य भाव देख करके उसको आस्वादन करने लगी कृष्ण को देख करके, तो यशोदा जी क्या हो गई
विषय
हो गई। जब कृष्ण उनको आस्वादन उनका रस आस्वादन करते हैं तो वो विषय हो जाएंगे, और जब
यशोदा जी आस्वादन करेंगे तब विषय
हो जाएंगे। उसी तरह से सब रसों में समझना
है।
जब भक्त लोग सखा लोग कृष्ण के साथ में गोचारण करने जा रहे हैं, कृष्ण कहते हैं जो सखा अरे गाय इधर उधर गई उनको जरा हाथ ले आना, तो आदेश कौन दे रहा है
कृष्ण।
और जब सखा लोग ही कहेंगे कृष्ण भैया गाय मिल नहीं गई
ढूंढ के लाओ
हमने बहुत खोजा अब जरा खोज लाना, तो आदेश देने वाला कौन
सखा लोग।
तो वहां पर सखा लोग क्या हो जाएंगे
विषय
और वो
कंधे में कृष्ण का चिन्ह।
फिर कृष्ण खा रहे हैं वो भी खा रहे हैं और सब भक्त लोग अपना टेस्ट करके और कृष्ण को खिला रहे हैं उनका जूठा। जब उनको खिला रहे हैं तो उसके विषय कौन है आस्वादन करने वाले,
तो भक्त विषय सखा विषय
वो कृष्ण विषय हैं और सखा लोग आश्रय हैं वो खिला रहे हैं कृष्ण को कृष्ण खा रहे हैं। और जब कृष्ण खा करके देखा ये बहुत मीठा है मक्खन या कोई चीज तो अपने मुख से निकाल दिया और सखाओं को देने लगे, सखा लोग खा करके बड़े तृप्त हो रहे हैं, तो उस समय हो जाएंगे मधुर रस। अब उसी तरह से मधुर रस में
दोनों आश्रय विषय होते हैं,
किंतु फिर भी विषय कहा जाएगा कृष्ण को ही और आश्रय कहा जाएगा हम लोग आश्रय रूप से कृष्ण को पाने के लिए साधन भजन कर रहे हैं
आश्रय
नहीं, तो फिर वो कैसे हम उनकी सेवा करने के लिए कर, इसलिए हम लोग अभी आश्रय के अनुगत्य में हम विषय के लिए भजन कर रहे हैं, इसलिए हम आश्रय का अनुगत होकर के करेंगे। विषय के अनुगत होने से नहीं होगा, कृष्ण के अनुगत होकर के हम भजन करेंगे ऐसा नहीं, कृष्ण का रूप चिंतन करते हुए करेंगे ना, तो कृष्ण का सादृश्य होकर के हम चतुर्बाहु हो जाएंगे या कृष्ण जैसा धारण करके पहुंच जाएंगे, इसलिए उनका नहीं। हमें किसको करना है, गोपियों जैसी सेवा प्राप्त करने के लिए गोपियों का चिंतन करते हुए यदि भजन करेंगे तो गोपियों का सादृश्य प्राप्त होकर के कृष्ण की सेवा हो, इसलिए गोपी भाव से भजन करना ही या सखा के भाव में भजन करना या वात्सल्य के अंतर्गत होकर के अनुगत्य में भजन करना चाहिए। हम ये बतला रहे हैं देखो जब कैसे बहुत गंभीर विषय अखिल रसामृत मूर्ति प्रसिमर रुचिरुद्धतार का पाली कलित श्यामा ललिता राधा प्रिया विधुर जय। ये भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने पहले श्लोक में कृष्णचंद्र जी की मंगलाचरण किया, ये मंगलाचरण का श्लोक पहले बताया विधुर जयति, विधुर जयति मैंने
चंद्र जय,
विधु की जय हो, विधु माने होता है विधिनोति खंडयति सर्व दुखम सर्व तापम सर्व अविद्या, ऐसे जो जितने भी चीजें हैं जो हमारे लिए बाधक हैं वो सब चीजों को खंडन मैंने दूर करना, वो है भी माने धुनोती, विधु माने धुनोती
विशेष रूपे न धुनोति माने दूरम करोति सर्व पाप सर्व अविद्या सब सर्व अमंगलम सर्व अनर्थ ये सब को दूर करके हमको कृष्ण की सेवा के उपयोगी बनाने वाले हैं, वो है यथार्थ। अच्छा, और एक अर्थ है विदधाति सर्व सुख, विदधाति माने करोति लाति सर्व सुखम, यहाँ विदधाति विदधाति माने करोति करोति सर्व सुखम सर्व सुख। जैसे चैतन्य इसमें शिक्षास्तक के पहले श्लोक क्या है,
चेतो
दर्पण मार चेतो दर्पण मार्जनम और महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। ये जो पहला हुआ सब प्रकार के जितने भी दावाग्नि है इस संसार में
निर्वाण
उसको दूर करना। भगवान का नाम ऐसा है जितने तरह के ताप हैं और तापों में भी दवाग्नि और बड़वाग्नि, बड़वाग्नि किसको कहते हैं, एक होता है वृक्षों के घर्षण से वन में अपने आग लग जाती है, बड़े बड़े वनों में हम जाते हैं देखते हैं कि आग के मारे सब वृक्ष जल गए हैं, उसमें पशु पक्षी भी जल गए हैं, कैसे होता, कौन आग लगाया, कोई आदमी पेड़ों की डालों में डालों के घर्षण से आग पैदा होकर के और उसमें वन में आग लग जाती है, इसको कहते हैं दावाग्नि, बड़ी भयंकर होती है। किंतु भगवान की कृपा से यदि वर्षा हो जाए खुद जोरों से तो क्या होगी,
निर्वाण
निर्वापन। किंतु यदि जल में आग लग गई